हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रूहान की उस तरह की गुस्से वाली आवाज सुनकर अनाही एकदम से चौंक गई और माथे पर बल डालते हुए बोली, क्या, किस टोन में बात कर रहे हैं आप मुझसे? रूहान ने जबड़ा कसते हुए कहा, पहले आप अपना टोन संभालें कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं। इस घर में मौजूद किसी भी शख्स के बारे में आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं आपको पलटकर कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन अगर मेरी ताईजी के खिलाफ आप एक शब्द भी बोलेंगी तो वो भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अनाही को इस बात का मतलब जरा भी समझ नहीं आया, सिवाय इस चीज के कि रूहान माधवो से कुछ ज्यादा ही कनेक्टेड है, शायद अपनी माँ से भी ज्यादा। अनाही ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, मैं किसी शख्स के बारे में गलत शब्द उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग यूज करती हूँ, और उन्होंने आज सुबह आपको आकर कहा वो सब हमारे रिश्ते के बीच दरार डाल रहा है। कल सुबह भी आपने इसी वजह से मुझसे इस तरीके से बात की, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। मैं आपके लिए कॉफ़ी बना रही थी और आपकी ताईजी खुद मेरे पास आई थीं कि वो आपके लिए कॉफ़ी लेकर जाएंगी। इसमें मेरी गलती कहाँ से हुई? और अगर गलत इंसान को मैं गलत नहीं बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी? और आज के इंसिडेंट में आपकी ताईजी सरासर गलत थीं। इसके बाद आप चाहे मुझे धमकाएं या फिर कुछ और करें, मैं उनको सही नहीं बोलने वाली हूँ। रूहान ने अपने गुस्से को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम थीं। उसने गुस्से में जबड़े कसे और फिर अचानक ही अनाही के करीब बढ़कर उसका गला पकड़ते हुए बोला, अगर एक बार और मेरी ताईजी को गलत बोला तो आज आपकी लाश यहाँ से जाएगी, समझी आप? रूहान अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और भी ज्यादा बड़ा करते हुए अनाही को धमका रहा था। वहीं उसकी पकड़ अनाही की गर्दन पर इतनी तेज थी कि अनाही को सांस भी नहीं आ रही थी और उसकी आंखों के कोने भी भीग चुके थे। अनाही ने सांस लेने की कोशिश की और अपना हाथ अपनी गर्दन से हटाना चाहा, लेकिन रूहान की ताकत के आगे वो कुछ नहीं थी। अनाही ने बड़ी मुश्किल से कहा, रूहान जी, मुझे सांस नहीं आ रही है, प्लीज लीव मी। रूहान उससे कुछ नहीं बोल रहा था, बस गुस्से से घूर रहा था। उसकी आंखों में लावा दहक रहा था। कुछ बीते पल उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। उसे अपने सामने तड़पती अनाही बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक ही शुगर ने अपना हाथ रूहान के दूसरे हाथ पर रखा और उसके पंजे की चुभन से रूहान तुरंत ही प्रेजेंट टाइम में लौट आया और उसे अचानक ही ध्यान आया कि वो क्या कर रहा है। उसने झटके से अनाही की गर्दन छोड़ दी और अगले ही पल शुगर को अपनी गोद में उठाते हुए तेजी से उस अटैच्ड कमरे में चला गया। वहीं उसके जाते ही अनाही खांसते हुए जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ वक्त बाद जब उसे लगा कि वो नॉर्मली सांस ले पा रही है, उसने हैरानी से उस कमरे की तरफ देखा जहां रूहान गया था। उसका दरवाज़ा अब बंद था। अनाही उठी और सीधा वॉश बेसिन के सामने जाकर अपने चेहरे को देखा। उसका चेहरा सांस न लेने पाने के कारण पूरी तरह से लाल हो चुका था। अनाही ने ठंडे पानी से दो तीन बार अपना चेहरा धोया और फिर चेहरे को टॉवल से पोंछते हुए एक बार खुद को मिरर में देखा। चेहरा धोने से उसके बिंदी और सिंदूर हल्का सा मिट चुके थे। अनाही मिरर के सामने गई और फिर माथे पर बिंदी लगाकर सिंदूर की डिब्बी अपने हाथ में ले ली। कुछ पल पहले उस इंसान ने उसे मारने की कोशिश की थी जिसके नाम का सिंदूर वो अपनी मांग में सजाने वाली है। यह सोचकर ही उसका दिल भारी हो रहा था और उसका हाथ सिंदूर लेने के लिए आगे बढ़ नहीं पा रहा था। उसने हिम्मत करके अपनी उंगलियों को सिंदूर की डिब्बी में डाला पर उसका पूरा हाथ कांप गया। उसने होठों को भींचते हुए अपने मन में कहा, वेदांत जी सही बोल रहे थे, शायद इस घर के लोग वैसे नहीं हैं जैसे मैं समझती हूँ। मुझे इस बारे में पूरी तरह से जानना होगा। मैं सिर्फ रूहान जी का बिहेवियर देखकर इस तरीके से शादी से पीछे नहीं हटूंगी। फिर उसने हिम्मत करके सिंदूर वापस लगाया और डिब्बे को वहीं रखते हुए वापस बालकनी में चली गई। बाहर शाम के वक्त हल्की ठंडी हवा चल रही थी जिससे अनाही को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। सोफे पर बैठी ही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। उसने फोन देखा तो उस पर काशी का नाम फ्लैश हो रहा था। अनाही का गला इस वक्त भरा आया हुआ था। उसका जोर से रोने का मन कर रहा था, लेकिन अपनी माँ का फोन आता देख उसने अपने गले के दर्द को घूंट भरते हुए गले से नीचे उतारा और फिर एक लंबी सांस लेते हुए फोन पिकअप कर लिया। सामने से काशी ने कहा, कैसी हो बेटा? अनाही ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, जी माँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं और पापा कैसे हैं? काशी ने अपने भरे गले से कहा, तुम दोनों बहनें तो वहां जाकर हमें भूल ही गई हो। 4 दिन हो गए हैं पूरे, तुम दोनों ने सामने से फोन नहीं किया, इसलिए बहुत चिंता हो रही थी। तुम्हारे पापा को आज वो मंदिर गए हैं शाम की आरती करने, शायद तुम दोनों की खुशहाल जिंदगी की प्रार्थना कर रहे होंगे। और मैं बस तुम दोनों को याद करती हूँ, ये पूरा घर मुझे काटने को दौड़ता है। पहले मुझे सपने कहा था कि तेरी जिंदगी दर्द में कटेगी क्योंकि तू सिर्फ 2 बेटियों की माँ है, पर मुझे कभी उनकी बातों पर गौर नहीं हुआ। मुझे कभी अपने बेटे की कमी महसूस नहीं हो रही कोई, लेकिन आज मुझे लग रहा है शायद मेरा एक बेटा होता तो कम से कम मैं बात तो कर लेती किसी से। तुम दोनों तो पराई होने के बाद बिल्कुल अनजान ही हो चुकी हो, कोई चिंता ही नहीं रही है माँ की। अनाही ने आंखें बंद करके खुद को शांत किया और फिर फोन काटते हुए इस बार वीडियो कॉल लगा दिया। काशी, जो उसके फोन काटने से घबराई थी, उसका वीडियो कॉल आता देख उसके होठों पर मुस्कान खिल गई और उसने जल्दी से फोन उठाते हुए अपनी आंखों के कोनों को पोंछकर कहा, 4 दिन के बाद देख रही हो तुम्हें और इस सुहागन के रूप में तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। वो फोन से ही अनाही के बलैया ले रही थी। एक माँ का दिल ऐसा ही होता है, उसे अपने बच्चों की हर तरीके से चिंता होती है। अगर वो अच्छा नहीं दिख रहा है तो इस बात की चिंता कि उसे देखकर लोग कहीं उसे कुछ कह तो नहीं देंगे, और अगर वो ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है तो इस बात की चिंता कि कहीं लोग उसे बुरी नजरों से तो नहीं देख रहे होंगे। अनाही ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी माँ कैसी बातें करते हैं, हम कैसे पराई हो सकती हैं जब आपकी कोख से जन्मी है। नया परिवार है, मैं यहाँ थोड़ा घुलमिल नहीं पा रही हूँ, इस वजह से मैं बस उन्हीं कोशिशों में लगी थी। पर अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो अब से मैं आपको रोज परेशान करूँगी, दिन में 5-5 बार फोन करके। फिर देखना, आप सामने से कहोगे कि दूसरे घर जाकर भी इस घर में सुकून नहीं छोड़ा तुम दोनों ने, पूरे दिन फोन कर करके तंग कर लेती हो। उसकी ये बात सुनकर काशी आंसू भरी नजरों के साथ ही मुस्कुराई और उसके होठों की मुस्कान देखकर अनाही ने भी चैन की सांस ली। उसके बाद दोनों माँ बेटी ने कुछ देर और बात की, उसके बाद अनाही ने फोन रख दिया। अब तक शाम के करीब 6 बजने को आए थे, इसलिए अनाही कमरे से निकलकर एक बार विहा को देखने गई। वो कमरे में पहुंची तो देखा विहा हाथ में एक नॉवेल पकड़े वहीं सोफे पर लेटी हुई थी, शायद से नींद आ गई थी। अनाही उसके पास गई और फिर वो बुक लेकर वहीं टेबल पर रखते हुए प्यार से उसके सर को सहलाया और फिर उसे कंफर्टर उढ़ाते हुए उसके कमरे से बाहर आ गई।
खाना बनाते वक्त भी अनाही के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रोहान चल रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था उसे सीधे निवेदिता से बात करनी चाहिए या फिर पहले वेदांत से पूछना चाहिए, क्योंकि वेदांत और निवेदिता दोनों ने ही पहले से ही रोहान के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया था। वो दोनों ही चाहते थे कि अनाही खुद से रोहान को जाने कि वो कैसा है। अनाही अजीब सी उलझन में फंस चुकी थी। थैंक यू सो मच सोनिया, दक्ष जी, क्यायत जी, आपके कमेंट्स हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेंगे। जब कोई और सपोर्ट नहीं कर रहा उस टाइम आप इतने लॉन्ग कमेंट करती हो, अल्लाह 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 कुकू कुकू। बाकी रीडर्स भी लंबे ना सही 2 शब्द का कमेंट जरूर करें, राइटर को अलग ही बूस्ट मिलता है। बॉम्बे, लव यू वंस अगेन, थैंक्स ऑल फॉर रीडिंग।